इस्लामी क्रांति और समाज।
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम इस्लामी क्रांति और समाज की कन्नी कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में इस्लामी क्रांति के बारे में पश्चिम के तीन विचारकों जॉन रिचर्ड, जॉन पियर डिगार्ड और एंथनी ब्लैक के विचारों पर चर्चा करेंगे। मोहम्मद अली कुम्मी और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार करें।
डॉक्टर यान रिचर्ड फ्रांस के प्रसिद्ध इस्लाम वेत्ता, विशेषज्ञ और सोर्बन विश्वविद्यालय में ईरानी मामलों की संस्था के प्रोफेसर और प्रबंधक हैं। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और साहित्य में उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर यान रिचर्ड ने इस्लामी शोध और राजनीतिक शास्त्र के विषय पर दो बार डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। यान रिचर्ड ने फारसी भाषा में डिप्लोमा हासिल किया, जो उन्होंने पेरिस में पूर्वी सभ्यता और राष्ट्रीय भाषा केंद्र से प्राप्त किया। सोर्बन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर यान रिचर्ड न्यू सोर्बन विश्वविद्यालय में ईरान के मामलों के शोध के प्रोफेसर, न्यू सोर्बन विश्वविद्यालय में ईरानी संस्था के प्रबंधक भी हैं, जबकि वो ईरान में फ्रांस के बारे में ईरानी संघ के प्रबंध और ईरान फ्रांस संस्था और अवशेष के निदेशक भी रहे हैं।
उन्होंने अब तक फारसी साहित्य और भाषा, ईरान के समकालीन इतिहास, ईरान में धर्म, ईरान के वर्तमान समाज और ईरान में शिया मुसलमानों के बारे में बहुत से शोध किए हैं। डॉक्टर यान रिचर्ड ने इसी प्रकार 20वीं सदी में ईरान नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने जॉन पियर डिगार्ड और बर्नार्ड ओरकार्ड जैसे बुद्धिजीवियों का सहयोग प्राप्त किया। इसी प्रकार उन्होंने बर्नार्ड ओरकार्ड के साथ मिलकर ज्वालामुखी के नीचे तेहरान नामक पुस्तक लिखी, जबकि उन्होंने शिया इस्लाम, ईमान और आइडियोलॉजी और आज के ईरान की प्रशंसा के लिए 100 शब्द नामक पुस्तक भी लिखी है। फ्रांस के ये विशेषक ईरान की इस्लामिक क्रांति पर सांस्कृतिक रूप से अपना दृष्टिकोण पेश करते हैं और ईरान की इस्लामिक क्रांति से प्रभावित होकर मूल दृष्टिकोणों की आलोचना करते हैं, जबकि देखा जाए तो उन्होंने ईरान की इस्लामिक क्रांति सहित क्रांति के पैदा होने में संस्कृति पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया।
यान रिचर्ड और उनकी पुस्तक 20वीं सदी में ईरान नामक पुस्तक में नज़र डालने से पता चलता है कि फ्रांस के इस्लामी मामलों के विश्लेषक यान रिचर्ड का मानना है कि शाह की सरकार 1960 के दशक के बाद पश्चिमी संस्कृति में डूब गई और इस चीज़ ने ईरान के अधिकतर सामाजिक वर्ग, विशेषकर व्यापारियों और धर्मगुरुओं को चिंतित कर दिया। फ्रांसीसी विश्लेषक कहते हैं कि मोहम्मद रजा पहलवी पूरी तरह से पश्चिमी संस्कृति में डूब चुका था और इस विषय के कारण उसने ईरानियों की धार्मिक पहचान की अनदेखी करते हुए ईरानी समाज में धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने पर काम शुरू कर दिया, किंतु उसकी यही कार्रवाई उसकी सरकार के पतन की मुख्य वजह बनी।
डॉक्टर यान रिचर्ड ने ईरान के बारे में जो शोध किया और इस्लाम के बारे में उनका जो मानना है, बयान करते हैं कि ईरान में 1970 के दशक में पश्चिमी विचारों के राजनैतिक और आर्थिक वर्चस्व से जुड़ने की वजह से धर्मगुरुओं की ओर से पश्चिम के विरुद्ध उठ खड़े होने और उसका भरपूर विरोध किए जाने का कारण बना, और ये धर्मगुरु हमेशा से अपनी ईरानी संस्कृति की ओर पलटने को अपना लक्ष्य करार देते थे। इस फ्रांसीसी इस्लामवेत्ता का मानना था कि ईरान की क्रांति में शिया एक उच्च विचार से एक उच्च आस्था में परिवर्तित हो गया और ईरान के बुद्धिजीवियों और धर्मगुरुओं ने इसको पहचान की जंग का नाम देकर इससे भरपूर लाभ उठाया।
जॉन पियर डिगार्ड भी ईरान की क्रांति के बारे में दृष्टिकोण पेश करने वालों में से रहे हैं। जॉन पियर डिगार्ड फ्रांस के बड़े बुद्धिजीवियों में गिने जाते थे। उन्होंने इस्लामिक क्रांति के बारे में अपना दृष्टिकोण पेश करने के साथ ही शिया धर्म की संस्कृति और उसमें होने वाले परिवर्तनों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया है।
जॉन पियर डिगार्ड के अनुसार 1978 की शिया क्रांति एक प्रकार से शिया मुसलमानों की विशेष क्रांति है, जिसने क्रांति के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया। उनका मानना है कि शिया धर्म की प्रवृत्ति में परिवर्तन और उसका अस्तित्व में आना किसी भी प्रकार से अचानक या घटना स्वरूप नहीं था। उनका मानना था कि शिया धर्म एक घटनाक्रम, एक विदित टैक्टिक या एक अस्थायी चलचित्र नहीं है। इसलिए ईरान की क्रांति को अन्य सामाजिक क्रांतियों की भांति समझा नहीं जा सकता और इसको भीतरी व्यवस्था और धार्मिक पहचान की गहराइयों से हटकर समझने का प्रयास करना चाहिए।
इस फ्रांसीसी विश्लेषक का यह मानना है कि ईरान के अधिकतर जनता के धर्म के रूप में शिया धर्म हमेशा से विश्व शक्तियों के विरोध का केंद्र रहा है। डिगार्ड करबला की घटना को शिया मत के पैदा होने का कारण बताते हैं और ईरान की इस्लामिक क्रांति के अस्तित्व में आने में करबला की घटना का प्रभाव मानते हैं। इस संबंध में वो लिखते हैं कि करबला की घटना की याद में आयोजित होने वाला वार्षिक कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाता है। हर साल उसकी याद बहुत ही भव्य रूप से मनाई जाती है और करबला की महान घटना को जीवित किया जाता है। इस प्रकार से करबला की घटना ईरानियों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के लिए एक समृद्ध, स्थायी, मजबूत और पक्का स्रोत बन गई है।
ईरानी लोग करबला की घटना को आधार बनाते हुए अपना जीवन जीते हैं। करबला और आशूर की घटना ईरान में शिया पंथ की जीवन शैली के आस्था के आधार में परिवर्तित हो गई। यही कारण है कि करबला की घटना को जीवित रखना और ईरान में शहादत, अदालत और वास्तविकता जैसे सिंबल एक संयोग सादा और ऐसे ही छोड़ देने योग्य नहीं है, बल्कि जीवन की एक प्रकार की शैली है जो छाई हुई है, जारी, और इसके प्रभाव क्रांति के दौरान पूरी तरह से दिखाई दिए। ईरान में जब क्रांति के लिए सड़कों पर व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हो रहे थे तो 1978 में युवाओं ने सैनिकों की गोलियों के सामने अपने सीने पेश कर दिए और ये चीज़ करबला के अलावा कहीं और नहीं मिलती। करबला के इन्हीं सिंबल और नारों के कारण ईरानी जनता ने स्वयं को हुसैनी और शाह को यजीदी करार दिया था।
डिगार ने ईरानी जनता की संस्कृति के ओर संकेत करते हुए क्रांति को इमाम हुसैन और करबला की घटना पर निर्भर करार दिया। शिया मुसलमानों के आज़ादारी के कार्यक्रम की वजह से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन होने लगे और यही वो स्थान थे जहां पर शिया युवा और धर्मगुरु एक साथ एकत्रित होते थे। इमाम खुमैनी का कहना है कि ईरान की इस्लामिक क्रांति आशूरा की छत्रछाया और महान ईश्वरीय क्रांति है।
एक अन्य विषय जिसकी ओर डिगार्ड ने इस्लामिक क्रांति के बारे में पेश किया है वो ईरान में क्रांति पैदा होने के धार्मिक सिंबल के सामने आने में इमाम खुमैनी के बारे में धर्मगुरुओं की भूमिका है। डिगार्ड के अनुसार इस्लामिक क्रांति शिया आध्यात्मिकता के हालिया एक शताब्दी के वैचारिक प्रयासों और कोशिशों का परिणाम है। देश की आंतरिक क्षमता में आध्यात्मिकता के साथ इतना अधिक विस्तार हुआ और ये परिपूर्णता तक पहुँच गया कि ये चीज़ जनता के जीवन में इतनी रच बस गई कि इसको अलग नहीं किया जा सकता। वो इस संबंध में कहते हैं कि 1978 में शिया धर्मगुरुओं ने वो फल चुना जिसका बीज उन्होंने एक शताब्दी के दौरान लोगों के दिलों में बोया था।
एंथोनी ब्लैक पश्चिम के एक अन्य बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने इस्लामी राजनीतिक विचार का इतिहास पैगंबर इस्लाम के काल से आज तक नामक पुस्तक लिखी और वे इस पुस्तक में इस्लामिक क्रांति की ओर संकेत करते हैं। वो इस्लामिक क्रांति के अस्तित्व में आने के तीन कारण बयान करते हैं। एंथोनी ब्लैक लिखते हैं कि इमाम खुमैनी के राजनीतिक विचार किसी व्यक्ति या व्यक्ति की सरकार पर बल के लिहाज से सही है और अन्य क्रांतिकारियों से पूर्ण रूप से भिन्न थी और शायद समकालीन इतिहास में अद्वितीय थी। उन्होंने विलायत फकी की एक शाखा के रूप में इस्लामी सरकार को पेश किया और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक विदेशी पिट्ठू के रूप में शाह की विश्वसनीयता को समाप्त कर दिया था।
1960 के दशक के अंत में और 70 के दशक के आरंभ में आयतुल्लाह इमाम खुमैनी और अन्य लोगों ने यह दृष्टिकोण पेश किया कि जब सरकार पूर्ण रूप से अतिग्रहणकारियों और अत्याचारियों के हाथ में हो तो न्यायप्रिय धर्मगुरु की जिम्मेदारी है कि यदि सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने की संभावना हो तो वो मुसलमानों के बीच न्याय और व्यवस्था स्थापित करे। उस काल में इस प्रकार का दृष्टिकोण पेश करना इसलिए था क्योंकि वो शाही सरकार को इस्लाम विरोधी सरकार समझते थे।